ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ शुद्धात्मने नमः नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयरियाणम् नमो वर्छायाणम् नमो लोये सवसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् भेत्तारम् कर्मभूवृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वंदे तद्गुणलब्धये। आचार्य उमा स्वामी ने लिखा हुआ तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, जिसका दूसरा नाम है मोक्ष शास्त्र। ये उमा स्वामी थे ते कुंद कुंद के पट्ट शिष्य थे। कुंद कुंदाचार्य ने ते पांच परमागम और भी अन्य ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से तो अध्यात्म की मुख्यता है ही है, और उन्हीं के शिष्य ने जो तत्वार्थ सूत्र की रचना की है, तो वहां तो दोनों ही नयों का अवलंबन किया है। व्यवहार नय की भी अधिकता से वहां उद्देश्य है, और फिर भी उसमें निश्चय नय भी बताया है। जैसे जीवों के एकेंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय पर्यंत भेद भी बताए, और फिर बता दिया कि उपयोगो लक्षणम, जीव का लक्षण उपयोग है। क्योंकि जब अध्यात्म की बात सुनते हैं तो जैसे अन्य मतियों में वो आत्मा बस त्रिकाल शुद्ध बुद्ध है, इतनी बात करते हैं, पर्याय की बात ही नहीं करते। तो कभी क्या है, जैनी ही अध्यात्म की मुख्यता से बात सुनकर कभी भ्रमित हो जाते हैं, वो सर्वथा वैसा मानने लगते हैं। तो इसलिए उन्हीं के शिष्यों को सामने जो जीव होते हैं उसके अनुसार उपदेश भी आता है। तो यहां व्यवहार नय से भी उन्होंने बहुत सारा कथन किया है। तो ये जो जैन दर्शन का जैसे कैटलॉग जैसा है, पूरा उनमें विवरण आ गया है जैन दर्शन का। अब यहां जो ये भावों के नाम हमने देखे थे कल, कौन कौन से भाव हमने देखे थे, जिसको कहते हैं जीव के असाधारण भाव, जो अन्य द्रव्यों में नहीं है, जीव में पाए जाते हैं। कौन कहना चाहता है? हाँ बेन, कला बेन। बहुत अच्छा। औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक और औदयिक, पारिणामिक, ये पांच प्रकार के भाव है। उसमें हमने कल चर्चा की थी कि पारिणामिक भाव सभी जीवों में पाया जाता है, भले वो संसारी हो या सिद्ध हो। औदयिक भाव सभी संसारी जीवों में पाया जाता है। क्षायोपशमिक भाव सभी छद्मस्थ जीवों में पाया जाता है, यानी कोई ऐसा छद्मस्थ जीव नहीं कि जिसमें क्षायोपशमिक भाव नहीं है। क्षायिक भाव तो अलग अलग गुणों की अपेक्षा अलग अलग गुण स्थानों में प्रकट होता है। और औपशमिक भाव है वो धर्म की शुरुआत जो औपशमिक सम्यक्त्व से होती है, जिसको प्रथमोपशम सम्यक्त्व कहते हैं, वह अनादि मिथ्या दृष्टि को सबसे पहले धर्म की शुरुआत होती है, तब उसके औपशमिक भाव पाया जाता है। ये जो पारिणामिक भाव है वो जीव का स्वभाव भाव है, अनादि अनंत पाया जाता है। और अन्य जो चार भाव है वो पर्याय रूप भाव है तो एक एक समय वाले, भले क्षायिक भाव भी हो वो है तो एक समय का, क्षौपशमिक भाव हो, एक एक समय करके उसके प्रवाह रूप से कुछ काल तक चले गए, उसकी अपेक्षा उसमें कोई औदयिक भाव हम कह सकते हैं अनादि से था और फिर उसका अंत हो गया तो कहेंगे अनादि शांत। क्षायिक भाव जो है अनादि से नहीं थे, बाद में प्रकट हुए, तो हम कहेंगे सादी है, और अनंत काल टिकेंगे तो हम कहेंगे वो अनादि अनंत है, ये सादी अनंत है। कोई मिथ्यात्वी जो जीव है, जैसे हम अभवियों की बात करेंगे, तो उनका मिथ्यात्व तो अनादि से और अनंत काल रहेगा, तो उसको कहेंगे वो अनादि अनंत भाव है। पर्याय रूप भाव की बात चली, वो प्रवाह रूप से उसमें बताया जाता है। अब उसमें हम जीवों की संख्या की अपेक्षा भी कल हमने बात की थी, और उसकी परिभाषाओं की बात हमारी आगे बढ़ेगी। हमने दो भाव देखे थे, औषमिक भाव और क्षायिक भाव। ये आत्मा के पुरुषार्थ के द्वारा औषमिक भाव और क्षायिक भाव प्रकट होता है, ये बात हमने कल देखी थी। उसके नाम जो औषमिक या क्षायिक पड़े हैं, क्योंकि जब जब आत्मा में भाव है वहां सामने कर्मों का निमित्त है, भले वो उदय रूप हो या अभाव रूप हो। निमित्त अभाव रूप भी होता है कि नहीं होता है? हाँ सल्ला भी, अभाव रूप भी कोई निमित्त होता है कि नहीं होता है? जैसे ये शिल्पा जी यहां बैठे हैं ना, प्रवचन में बैठी है, तो बाहर बच्चे खेल रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो क्यों मस्ती कर रहे हैं? क्योंकि मम्मी का वहां अभाव है ना, इसलिए मस्ती कर रहे हैं। मम्मी पापा के सामने इतनी मस्ती नहीं करते, तो हम क्या कहेंगे? वो अभाव है, वो निमित्त रूप से। समझ में ऐसा ही यहां जो क्षायिक कहते हैं, तो क्षायिक में क्या है? वहां कर्म सत्ता में से निकल गए पूरे। फिर हम वो क्षय तो एक समय के लिए हुआ था, उसके बाद तो कर्म है ही नहीं है। तो कर्म का नहीं ही होना वो क्षायिक भाव में हम हमेशा उसको गिनेंगे। केवल ज्ञान पहले समय में हुआ था, तभी तो कर्मों का क्षय हुआ था। दूसरे समय के केवल ज्ञान में कर्म थे ही नहीं, तो वहां नया कुछ क्षय तो हुआ नहीं है। जो क्षय हुआ है, यानी वो जो कर्मों का अभाव हो गया है, वो अभाव चला आ रहा है, तो हम कहेंगे फिर भी उसको क्षायिक भाव है, क्योंकि वहां कोई कर्मों की सत्ता भी नहीं है और उदय भी नहीं है। तो कर्मों में भी ये हम कर्मों में क्षय हुआ ऐसा कहेंगे, और जीव में जो वहां भाव है उसको क्षायिक भाव कहेंगे। पांचों ही भाव में इस तरह से हम लगा सकते हैं। चार भावों में तो कर्मों की अपेक्षा आएगी हो, क्यों? क्योंकि ये पर्याय रूप भाव है। निमित्त होता है, वो स्वभाव में कभी निमित्त नहीं होता। क्या कहा? स्वभाव जो है, स्वभाव तो स्वभाव है, कब से कब तक होता है? अनादि से अनंत काल तक होता है। जो नया कार्य होता है, तो किसी कार्य में, कार्य कहो या पर्याय कहो, तो पर्याय में निमित्त हो सकता है या होता है, परंतु जो स्वभाव है उसमें निमित्त का कोई प्रयोजन ही नहीं है। जहां कार्य यानी पर्याय होते हैं, वहां अनेक कारण होते हैं। उसमें से मुख्यतः कहेंगे तो दो कारण है, एक उपादान कारण यानी जीव की निज शक्ति, और एक होता है निमित्त कारण यानी कोई परद्रव्य की पर्याय। तो निज शक्ति में भी बहुत, हम पांच समवायों की अपेक्षा बात करेंगे कि पांच कारण तो वहां होते ही है, तो उसमें तो एक स्वभाव रूप कारण है जो अनादि अनंत है, जो पुरुषार्थ है उस द्रव्य का, जो होनहार है, जो होने वाली पर्याय ही उस रूप कार्य होता है, और जब होने वाली है तब होता है, पर्यायों का क्रम भी निश्चित है। तो ये जो चार कारण है इसको मिलकर उपादान कारण कहेंगे, और निमित्त नाम का जो पांचवा समवाय कारण है वो तो परद्रव्य होता है। तो ये चार मिलकर उपादान है और एक निमित्त है। जब जब कार्य होता है, कार्य होने की बात है, यानी पर्याय में ये उपादान और निमित्त लगेंगे। तो निमित्त का कथन कहाँ होगा? जो पर्याय रूप भाव है वहां निमित्त का कथन होगा। अब यहां हमने चार पर्याय रूप भाव देखे हैं। औषमिक भाव जब हम कहते हैं, जीव की पर्याय में औषमिक भाव उत्पन्न हुआ है। क्यों उत्पन्न हुआ बेन? किसने उत्पन्न कराया? उसका कर्ता कौन है? जीव स्वयं। और फिर निमित्त का कथन करना है तो वहां कर्म का उपशम पाया जाता है। कर्म का, हाँ
आप ये बोल रहे हैं कि आत्मा का जो स्वभाव है, मतलब ये स्वभाव क्या है जैसे जानना है, तो मतलब ये फिर ये सब ये विकारी भाव क्यों उत्पन्न होते हैं? यदि उसका स्वभाव ही है जानना, तो मतलब वो सिर्फ मतलब ऐसी क्या चीज है कि जो मतलब
बरोबर है आपका प्रश्न,
कोई परेशान करती है, मतलब आत्मा आत्मा ही को परेशान कर रही है।
आत्मा स्वयं परेशान हो रही है अपनी ही भूल के कारण। देखिए, जैसे आत्मा का स्वभाव है ना, जानना 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 उसका स्वभाव है, तो स्वयं ही विभाव रूप परिणाम में ऐसी योग्यता भी आत्मा में है। अब हम छह द्रव्यों की बात करेंगे। जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये छह द्रव्य है। इसमें से धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये जो चार द्रव्य है, वो तो हमेशा ही स्वभाव रूप ही परिणमन करते हैं, उनमें कोई विभाव ही होता नहीं। परंतु पुद्गल और जीव में ऐसी योग्यता है कि वो विभाव भी कर सकते हैं, स्वभाव भी कर सकते हैं उसकी अपनी योग्यता के अनुसार। पहले हम पुद्गलों का विभाव किसको कहते हैं, तो परमाणु रूप से रहना ये पुद्गलों का स्वभाव यानी शुद्ध पर्याय है। एक स्वभाव होता है जो त्रिकाली रहता है, और एक जो पर्याय में स्वभाव रूप या विभाव रूप परिणमन होता है उसको पर्याय की स्वभाव रूप या विभाव रूप अवस्था हम कहेंगे। पर्याय में स्वभाव रूप अवस्था किसको कहेंगे, परमाणु परमाणु रूप से रहता है वो उसकी स्वभाव पर्याय है, पर्याय की बात है। और जब परमाणु जुड़कर एक दूसरे के साथ बंध होता है और उसका स्कंद बनता है तब हम उसको कहते हैं वो परमाणु की विभाव अवस्था है। विभाव अवस्था में भी त्रिकाली स्वभाव शुद्ध ही रहता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे पानी का स्वभाव कैसा है आप क्या कहेंगे उसको, ठंडा है, शीतलता पानी का स्वभाव है। परंतु अग्नि के निमित्त में एक पानी गर्म होता है, वो पानी की स्वयं की योग्यता से गर्म होता है, अग्नि से ही गर्म होता है, हमें कर्ता उसको ही मानेंगे, तो अग्नि से तो सभी चीजें गर्म होनी चाहिए थी। परंतु हम देखते हैं लकड़ी जला रहे, जलती हुई लकड़ी हाथ में पकड़ते हम, दूसरा एंड गर्म नहीं हो रहा है, वहां पर एस्बेस्टॉस है, वो भी उष्णता से यानी उसमें भी कुछ गर्मी नहीं होती, वो नहीं जल रहा है, तो ये उसकी अपनी योग्यता है। तो ठंडा त्रिकाली स्वभाव ठंडा होते हुए भी पर्याय में उसकी विभाव रूप अवस्था हो सकती है, ये पानी की अपनी योग्यता है। वैसे ही जीव का जो त्रिकाली स्वभाव है वो ज्ञाता दृष्टा स्वभाव है, विभाव करना उसका स्वभाव नहीं है, क्योंकि स्वभाव होता तो हमेशा ही रहना चाहिए था। स्वभाव उसी को कहते, हमने पहले ही दिन डेफिनेशन की कि जो अनादि से ही होता है, अनंत काल रहता है और बिना किसी निमित्त से होता है, उसको हम स्वभाव कहेंगे, क्योंकि वो वस्तु का निज धर्म मूल स्वभाव है। परंतु जीव में ही ऐसी योग्यता पाई जाती है कि जो विभाव भी हो सके। अब उसमें विभाव में उसको निमित्त फिर हम कहते हैं ये कर्म के निमित्त में जीव विभाव करता है। जब निमित्त की बात आती है तब ऐसा नहीं समझना कि क्या करे, जीव तो बहुत शांत स्वभावी है परंतु कर्म उसको जबरदस्ती से राग द्वेष मोह कराता है, ऐसी बात नहीं है। जीव स्वयं उस रूप परिणमता है तो सामने वहां पर कर्मों का निमित्त पाया जाता है, क्योंकि जीव ने कर्म बांधे हुए है, वो उदय में आते रहते हैं और उसके उदय में उदय के काल में यहां जीव स्वयं क्रोध मान माया लोभ रूप परिणमता है, तो वहां कर्मों का उदय भी कहने में आता है। ये जो पहले जो पांच भावों में से पहले जो चार भाव है पर्याय रूप भाव है, इसमें कर्मों की अपेक्षा लगाएंगे। अपेक्षा का अर्थ उदय रूप ही होना चाहिए, ऐसा नहीं है, अभाव रूप भी अपेक्षा लग सकती है या उदय रूप भी अपेक्षा लग सकती है। सद्भाव रूप जिसको कहेंगे, अभाव और सद्भाव, जैसे औपशमिक भाव है तो पहले से अनादि से ही दर्शन मोहनी का जो मिथ्यात्व कर्म था उसका उदय उदय चल रहा था और यहां जीव में क्या हो रहा था, मिथ्यात्व भाव, मिथ्यात्व भाव हो रहा था, दोनों एक समय में दोनों में हो रहे थे अपने अपने कारण से। अब जीव जब तत्व की रुचि करता है और वो सम्यक दर्शन रूप भाव अपने पुरुषार्थ से प्रकट करता है तो वहां हर समय वो उदय आ रहा था ना, सत्ता में तो कर्म पड़े हैं परंतु वो उदय आता नहीं, अंतर्मूर्त के लिए दब जाते, अंदर ही रहते हैं, उदय रूप नहीं आते, तो ये वहां कर्मों का उपशम हुआ और यहां जीव को जो सम्यक्त्व प्राप्त हुआ है उस समय उसको कहते हैं औपशमिक सम्यक्त्व। तो यह औपशमिक भाव में कर्मों के उदय का न होना, उपशमित होना, ये निमित्त कहलाएगा। दूसरा क्षायिक भाव है, वहां भी अभाव रूप ही निमित्त है, अभी हमने देखा ना अभाव भी निमित्त कहला सकते है, तो यहां जीव का क्षायिक भाव अपने पुरुषार्थ से हो रहा है और वहां कर्म है ही नहीं सत्ता में। जब क्षायिक सम्यक्त्व है तो यहां जीव में क्षायिक सम्यक्त्व रूप भाव अपने कारण से प्रकट हुआ है और वहां सामने कर्मों के वो अनंतानुबंधी और दर्शन मुनि के तीन बिल्कुल निकल गए हैं, सत्ता में से कायम के लिए निकल गए। तो क्षायिक सम्यक्त्व तो अभी प्रकट हुआ तो अनंत काल तक रहेगा, अभी अनंत काल तक रहेगा, पर हम मान लेते चौथे गुणस्थान में प्रकट हुआ है क्षायिक सम्यक्त्व। तो जब जिस समय प्रकट हुआ उस समय वहां तो अभाव हो गया था ना। अब जो क्षणिक राजा, जब यहां क्षणिक राजा की पर्याय में था तो उसने क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त किया, अब वे कहाँ है मालूम है किसी को? पहले नरक में है। तो पहले नरक में उनका क्षायिक समय तो चल रहा है कि नहीं रहा? क्योंकि उनके सत्ता में जो कर्म थे, दर्शन मुनि और अनंतानुबंधी, वो पूरे सत्ता का नाश हो गया है। तो अभी वो फिर से उसमें उत्पन्न होने का कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि उनके क्षायिक समय तो है। तो फिर गिर के वो मिथ्यात्व में नहीं चले जाएंगे, क्योंकि निमित्त रूप वहां मिथ्यात्व कर्म सत्ता में ही नहीं है, तो उसका उदय होने का कभी सवाल ही नहीं है। और जीव भी कभी मिथ्यात्व परिणाम करने का सवाल नहीं है। ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध कर्मों के साथ बनता है। अब ये जो क्षायिक भाव की बात हुई, क्षायिक ज्ञान की भी बात करेंगे। केवल ज्ञान होता है उस समय ज्ञानावरण, पांचों ही प्रकार के ज्ञानावरण का क्षय हो चुका है। अब ये फिर से दोबारा तो ज्ञानावरण कहीं से बंधेंगे नहीं, जो कि उदय में आ जाए वापस। तो इसलिए उसको कहते हैं ये क्षायिक ज्ञान है। अब हम कहते हैं आगे जो क्षावक्षमिक भाव है, तो ये जो क्षावक्षमिक भाव है तो उसमें भी कर्मों का क्षय और उपशम जो है उसकी चर्चा और आगे आएगी। कर्मों में क्षयोपशम नाम का विशिष्ट जो उसकी अवस्था होती है, और यहां जीव में क्षयोपशमिक भाव उत्पन्न होता है। यानी यहां भी कर्म की अपेक्षा आ गई। अपेक्षा कहा, अपेक्षा जब कहते हैं तो कहीं उदय की अपेक्षा होगी और कहीं अभाव की अपेक्षा होगी। औदयिक भाव में कर्मों का उदय है और यहां जीव में औदयिक भाव है। जैसे जीव में क्रोध हो रहा है, आपने जो पूछा ना विभाव क्यों करता है, स्वभाव ऐसा है, स्वभाव तो सर्वज्ञता और वितरागता है, फिर भी विभाव क्यों करता है? अपनी ही योग्यता से कर रहा है कि यहां वो क्रोध रूप परिणमित हो रहा है। तो वहां सामने क्रोध कर्म का उदय पाया जाता है। कर्मों के नाम भी वही है जैसे जीव के परिणाम है। जीव में भी मिथ्यात्व तो होते हैं, क्रोध मान माया लोभ होते हैं। कर्म में भी मिथ्यात्व नाम का कर्म है, क्रोध नाम का कर्म है, मान नाम का कर्म है। तो जब यहां जीव स्वयं क्रोध रूप करता है तो वहां कर्म में भी क्रोध का उदय पाया जाता है। तो उसको कहते हैं औदयिक भाव। उस निमित्त पर आरोप करता है, निमित्त ने कराया ऐसा कथन करने में आता है। तो यह है औदयिक भाव, कर्म के उदय में, उदय के निमित्त में होने वाले जीव के परिणाम। तो अब मेरा प्रश्न है, पारिणामिक भाव में कौन सा निमित्त होगा? कर्म का उदय होगा, उपशम होगा कि क्षोपशम होगा? हाँ बेन, आप क्या कहते हैं? क्यों नहीं होगा? बहुत अच्छा है। ये मूल बात पकड़ में है ना। पारिणामिक भाव कुछ नया कार्य नहीं है, स्वभाव है, वो कार्य नहीं है, वो तो जीव का स्वभाव भाव है। वो अनादि से अनंत काल तक जो द्रव्य होता है उसका स्वभाव उसमें है ही है। उसके बिना हम उसको द्रव्य कैसे कहेंगे? द्रव्य तो उसी को कहते हैं जो द्रव्य सब्सटेंस स्वयं है, उसका कोई ना कोई फैलाव, विस्तार, वॉल्यूम कुछ ना कुछ है, उसको हम क्षेत्र कहते हैं। काल यानी उसका कुछ ना कुछ परिणमन, पर्यायों का क्रम उसमें अंतर्भूत ही है। द्रव्य की पर्याय होती है उसको उसका काल कहेंगे, और उसका भाव यानी उसके स्वभाव, उसके जो अनंत गुणों का समुदाय है उसको हम भाव कहेंगे। जब हम द्रव्य कहते हैं तो उसमें ये चारों ही डायमेंशंस उसमें हैं। द्रव्य को अपना द्रव्य होता है, क्योंकि जब हम पहले द्रव्य शब्द सुनते हैं, उसकी परिभाषा याद करते हैं, छह द्रव्य है कहते हैं, तो ये द्रव्य क्या होता है ऐसा प्रश्न आता है ना, हमें भी आता था। जो प्रत्येक द्रव्य है सब्सटेंस है, मूलभूत सब्सटेंस। पहले तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे तो एलिमेंट्स कहते थे, तो उसके आगे कुछ होगा ऐसा नहीं समझते थे। फिर वैज्ञानिकों ने तरक्की की ना, फिर और उसको और फिर ज्यादा ढूंढा, तो फिर मॉलिक्यूल से फिर समझ में आया कि इसके एटम्स होते हैं। फिर एटम के बाद उसके भी और डिसेक्शन किया ना? उसके और फिर भेद करके देखे तो उसमें भी प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स ख्याल में आ गए। तब तो समझते थे यही सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। अभी उसके भी आगे चलकर उसके भी न्यूक्लियस जो कुछ है, अन्य अन्य चीजें वो ख्याल में आ गई है। तो ये नहीं थी, ये बात नहीं है, हमारे ज्ञान में नहीं आती थी। परंतु यहां सब्सटेंस तो उसी को कहते हैं जो मूलभूत पदार्थ है इस विश्व में, जो कोई एंटिटीज है, मूलभूत एंटिटीज, उसको द्रव्य या सब्सटेंस कहते हैं। तो उसको उसके लक्षणों के द्वारा हम पहचानते हैं। जैसे आप जब मैटर कहते हैं, उसी को यहां पुद्गल कहा है, तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल यानी स्मॉलेस्ट द्रव्य जो है वो परमाणु है, वो पुद्गल है। परंतु पुद्गल इकट्ठे होकर जुड़ सकते हैं, तो उसको स्कंध को भी हम पुद्गल कह देते हैं। ऐसे ही जीव नाम का सब्सटेंस है, वो पुद्गल से भिन्न द्रव्य है, तो उसकी अपनी एंटिटी है, उसको अपना क्षेत्र है, विस्तार है, जिसको हम असंख्यात प्रदेश ही कहते हैं। भले वो हाथी हो जाएगा तो वो असंख्यात प्रदेश संख्या बढ़ नहीं जाती, वॉल्यूम उसका विस्तार हो सकता है, स्प्रेड हो सकते हैं। और जब वही जीव चींटी के पर्याय में चला जाता है तो उसके असंख्यात प्रदेशों की संख्या घटती नहीं है, परंतु वो संकोच होता है और वो चींटी के देह में चला जाता है। हमने कल निगोद की बात देखी थी, तो निगोद की जो है अवगाहना यानी साइज ऑफ देयर बॉडी, वो इतनी छोटी है तो उसमें भी वो जीव समा जाता है। तो उसके ये जो अलग अलग, या वो महामत्स्य का देह धारण करेगा, तो आत्मा के प्रदेश फैलते हैं, प्रदेशों की संख्या बढ़ती नहीं है। अब मान लेते यहां मेरा हाथ कट गया तो क्या हो जाएगा, आत्मा के प्रदेश कितने कम हो गए, कुछ नहीं होगी, क्योंकि वो संकोच हो जाते हैं और जितना बाकी शरीर है उसमें वो समा जाते हैं। तो इस तरह से आत्मा के प्रदेशों का संकोच विस्तार होता है, परंतु संख्या में कम ज्यादा नहीं होती। हर एक द्रव्य के, जीव द्रव्य हो, पुद्गल हो, धर्म अधर्म आकाश और काल है, उसके अपने अपने प्रदेश अलग अलग है। प्रदेशों, हमें उसको प्रदेशों में गिनते हैं उसको। जैसे जीव है वो असंख्यात प्रदेशी है, धर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में स्प्रेड है, वो असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य पूरे लोकाकाश में स्प्रेड हुआ है, उसको भी असंख्यात प्रदेशी है। इस तरह से उसके हम प्रदेश गिनते, वो अपना विषय नहीं है। तो सिद्धांत प्रवेशिका में यहां हुआ था ना अपना गत वर्ष, बहुत इस पर बहुत विस्तार से चर्चा हुई थी। अब थोड़ी उसको याद दिलाया। अब हम आगे देखते हैं अपने कि यहां जो निमित्त जो है वो चार भावों में होता है, पांचवा जो पारिणामिक भाव है उसमें निमित्त का कोई प्रयोजन नहीं है, किसी कर्म के कारण ये पारिणामिक भाव नहीं होते हैं। अब इनकी जरा संख्या भी देखते हैं हम, कितने कितने हैं। औपशमिक भाव हमने कितने देखे थे कल, याद है? दो है, यहां लिखे है, देखो आगे, उसके आगे लिखे है, दो है। कौन से है? हाँ, तो दो ही गुणों के बारे में ये औपशमिक भाव होते हैं। एक श्रद्धा गुण के बारे में जो है औपशमिक भाव, उसको कहते हैं औपशमिक सम्यक्त्व, और चारित्र गुण के बारे में जो है उसको कहते हैं औपशमिक चारित्र। यहां कर्मों की बात अगर करेंगे तो औपशमिक सम्यक्त्व के काल में सामने दर्शन मोहनी कर्म और अनंतानुबंधी चार, इनका क्षय पाया जाता है, सॉरी उपशम पाया जाता है, क्षय नहीं, औपशमिक भाव देख रहे हैं। और औपशमिक चारित्र के समय में क्या होगा आगे, चारित्र मोहनी का वहां उपशम पाया जाता है। यह औपशमिक भाव दो हो गए। उसके बाद क्षायिक भाव हमने कल चर्चा की थी, कितने हैं याद है? हाँ पवन जी, नौ लिखे हैं। हाँ, कौन से हैं आप थोड़े गेस करो उसमें से, या सभी आते तो सभी बता दो, क्योंकि हमने तो अरिहंत भगवान की स्तुति तो कई की है। क्या नव क्षायिक लब्धि रमाधरंत, नव क्षायिक लब्धि रूप रमा, हाँ, उसको धरने वाले, उसको धारण करने वाले, यानी उनके नव क्षायिक भाव है। क्षायिक लब्धि कहो, क्षायिक भाव कहो, एक ही बात है। तो अरिहंत भगवान के कौन से नव क्षायिक भाव पाए जाते हैं, आपको याद है? थोड़ा गेस भी करो। हाँ देखो, चार अनंत चतुष्टय तो हमने देखे हैं, हाँ तो उसको गिनाओ आप। हाँ, केवल ज्ञान, जो अभी हमको क्षायिक भाव गिनने ना, हम उसके पीछे क्षायिक लगाएंगे, क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र, और फिर दान, यानी क्षायिक दान, क्षायिक लाभ, क्षायिक भोग, क्षायिक उपभोग और क्षायिक वीर्य, ये नौ हो गए। ये दान लाभ उपभोग उपभोग वीर्य से ना, देखो चार घाती कर्मों का नाश किया है उन्होंने, तो हम ज्ञानावरण के नाश में क्षायिक ज्ञान प्रकट हुआ है, दर्शनावरण के नाश में क्षायिक दर्शन प्रकट हुआ है, मोहनी के नाश में श्रद्धा और चारित्र दोनों को लेना है तो क्षायिक सम्यक्त्व और क्षायिक चारित्र प्रकट हुआ है, और दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, ये अंतराय जो है ना, दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, उसके क्षय में क्षायिक दान लाभ भोग उपभोग वीर्य प्रकट हुए, ये पांचों।
ऐसा संभव है कि मतलब चार हो बाकी के पांच ना हो किसी में?
हाँ, आपका ऐसा प्रश्न है कि चार हो और बाकी के पांच ना हो, ऐसा किसी में संभव है कि नहीं है? तो हम पहले में पहले देखते हैं अकेला क्षायिक सम्यक तो हो, ऐसा कोई जीव होगा कि नहीं होगा, नौ में से एक ही है क्षायिक भाव, ऐसा कोई होगा कि नहीं होगा। हाँ हो सकता है, क्योंकि हमने देखा चौथे गुण स्थान में होता है। अब क्षायिक सम्यक तो भी है और क्षायिक चारित्र भी है, ऐसा कोई जीव होगा कि नहीं होगा, तो कहते बारहवें गुण स्थान में है, क्योंकि अभी उसको ज्ञानावरण दर्शनावरण अंतराय का क्षय नहीं हुआ है, तो ऐसा भी हो सकता है। परंतु भाई साहब का प्रश्न है वो पांच का क्षय न हो और अन्य चार तो हो, ऐसा कोई जीव है कि नहीं है, तो आप क्या कहते हो नीलिन भाई, आप क्या कहते हैं? नहीं, क्यों नहीं उसका हमको उत्तर भी देना पड़ेगा, क्योंकि खाली गेस तो अच्छा किया है आपने। हाँ हाँ, क्यों रजनी भाई आप कहेंगे? हाँ देखो, मोहनीय का नाश हो गया, अक्षय हो चुका, तो बारहवें गुण स्थान प्रकट हुआ है। परंतु बारहवें के अंत में या तेरहवें के बिगिनिंग में जो हम कहेंगे, तो वहां ज्ञानावरण दर्शनावरण और अंतराय तीनों ही गाति कर्मों का नाश एक समय में होता है, नाश यानी क्षय हो चुका है। तो अनंत ज्ञान कहो या क्षायिक ज्ञान, क्षायिक दर्शन और ये जो पांच है ना, ये सातों ही क्षायिक भाव एक समय में प्रकट होते हैं, यानी वो अन्य चार है और ये नहीं, ऐसी बात कभी बन ही नहीं सकेगी किसी जीव के। बारहवें गुणस्थान तो इनका तो क्षयक्षम भाव था सभी का, और तेरहवें गुणस्थान में जाते इन सबका क्षायिक भाव चालू हो गया। पहले दो तो हमने ऑप्शनल अलग देखे थे, ऐसा कोई जीव है उसको क्षायिक सम्यक तो और क्षायिक चारित्र है ही नहीं है, मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूं, और बाकी सात क्षायिक भाव प्रकट हुए? नहीं नहीं, यू शुड गेस इट एंड इट शुड गेस इट करेक्टली, उसका तो रीजनिंग चाहिए हमें, ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हाँ देखो, जिसने क्षायिक सम्यक को प्राप्त नहीं कर किया है वो क्षपक श्रेणी चढ़ ही नहीं सकता, भले उपशम श्रेणी चढ़े द्वितीय उपशम करके और उतरे, क्षपक श्रेणी यानी चारित्र मोह का क्षय कौन करेगा? जिसने पहले दर्शन मोहनी और अनंतानुबंधी का क्षय किया है, ऐसा जीव जो क्षायिक सम्य दृष्टि है, ऐसे जो मुनिराज है, वे ही क्षपक श्रेणी चढ़ना है, आठवें नौवे दसवें बारहवें गुणस्थान का पुरुषार्थ करना, और फिर वैसा होके एक अंतर्मूर्त में वो केवल ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो यानी क्षायिक सम्यक फॉरमोस्ट कंडीशन, उसके बिना क्षपक श्रेणी भी नहीं चढ़ेगा जी, तो बारहवें गुणस्थान के बिना आगे का भी अरिहंत अवस्था भी प्राप्त नहीं होगी, तो इसी क्रम से उनके क्षायिक भाव प्रकट हो गए। समाधान हुआ इतना? हाँ चलो हम आगे बढ़ेंगे।
तो क्षायिक तो होना ही है।
किसका क्षायिक?
क्षायिक सम्यक दर्शन तो होना ही है, तो ही करेगा।
हाँ आपका प्रश्न है क्षायिक सम्यक दर्शन होना ही, उसके बिना मोक्ष नहीं होगा, बरोबर है आपका, क्योंकि उपशम सम्यक दर्शन के साथ मोक्ष हो जाएगा। तो उपशम हम किसको कहते हैं? अंदर सत्ता में पड़े है कर्म, तो उन कर्मों को लेके मोक्ष में जाएगा कि नहीं जाएगा जीव? मोक्ष में जाना यानी क्या होना? मुक्त होना। तो कितने कर्मों के साथ जीव मुक्त होता है? कितने कर्म लेकर जाता है सिद्ध अवस्था? कोई कर्म नहीं। तो आपने उत्तर दिया कि क्षायिक तो होना ही पड़ेगा।
तो हुआ है किसी को और उसको कभी क्षायिक होना?
आपका प्रश्न है जो क्षायिक क्षायिक सम्य दृष्टि है उसको कब क्षायिक होना चाहिए? हम चाहने से कोई चाहिए वाली बात वहां नहीं होती है, जब अंतरंग में स्थिरता बढ़ जाती है और जब विशुद्धि अत्यंत बढ़ जाती है, तो सहज रूप से क्षोभम सम्यक वो क्षायिक सम्य दर्शन रूप हो जाता है। वो तो आठवें गुणस्थान वाला जो क्षपक श्रेणी चढ़ने वाला है वो क्षायिक सम्य दृष्टि ही होता है, परंतु सातवें गुणस्थान तक किसी को औपशमिक सम्यक तो होगा, किसी को क्षायक्षमिक होगा, किसी को क्षायिक होगा। अब कौन सा जीव क्षायिक सम्य दर्शन कब प्राप्त करता है ये तो वेरिएबल है, प्रत्येक जीव के अपने पर्यायों का जो क्रम है वो अलग अलग होता है। समझ में आया? कोई जीव जिस पर्याय में, जिस भव में, जिस मनुष्य पर्याय में क्षायिक सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, उसी भव में वो मोक्ष चला जा सकता है, वो उसका अंतिम भव हो सकता है। कोई ऐसा क्षायिक सम्यक दृष्टि है कि क्षायिक सम्यक दर्शन तो प्राप्त किया है, फिर देव में चला गया और देव में से आकर फिर मनुष्य होकर मोक्ष चला जाएगा, उसके अधिक भव नहीं होगी। कोई क्षायिक सम्य दृष्टि नरक में गया है क्योंकि उसने सम्य दर्शन प्राप्त करने के पहले नरकायु बांधी है। सम्य दर्शन होने के बाद ना तिर्यंचायु बंधेगी ना मनुष्य, यानी मनुष्य की बात करें, और ना ही नरकायु। सम्यक तो होने के पहले उसने अभी बांधी है तो वो नरक में जाएगा और फिर वहां से आकर मोक्ष चला जाएगा। आपके पहचान वाले है कोई ऐसे? हाँ, नहीं है। अरे पहचाने ने हमने प्रथमान योग में पढ़ा है, सुना है। हाँ, कौन है? श्रेणिक राजा। हाँ, अभी नरक में है और वहां से आकर तीर्थंकर होने वाले, यहाँ के भरतभूमि के उत्सर्पिणी के पहले तीर्थंकर। ऐसे कोई जीव होते हैं कि उन्होंने पहले मनुष्यायु या तिर्यंचायु बांधी है और बाद में क्षायिक समय दृष्टि हो जाते हैं, तो वो जीव भोगभूमि के क्षायिक समय दृष्टि होते हैं। भोगभूमि के बाद एक ही रास्ता होता है स्वर्ग का, तो वहां के बाद वो स्वर्ग में चले जाते हैं और वहां से क्षायिक समय दर्शन है तो छूटने का कोई सवाल ही नहीं है और फिर आकर मनुष्य होकर मोक्ष चले जाते। क्षायिक समय दृष्टि के इससे अधिक भव नहीं होते। एक तो जिस भव में प्राप्त किया, दूसरा एक्स्ट्रा होगा तो भोग भूमि का होता है किसी के, या देव या नारकी का होगा तो होता है जिसने पहले मनुष्य में से नरक में गया होगा। भोग भूमि जाने वाला यानी पहला भव मनुष्य का, दूसरा भोग भूमि का, तीसरा देव का और चौथे भव में नियम से मोक्ष जाता ही है।
फिर उनको विदेह क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा।
हाँ, विदेह क्षेत्र में ही जाना पड़ेगा। ये आप बात पंचम काल की, हमारे पंचम काल की अपेक्षा से ये बात करते हैं, परंतु मान लेते हैं तब भरत क्षेत्र में चौथा काल चलता होगा तो वो भरत क्षेत्र में या ऐरावत में कहीं भी जन्म लेंगे ख्याल में। तो जहां ये चौथे काल जैसी परिस्थिति जहां चल रही है वहां वो जन्म लेते हैं। ऐसा ही सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता है। जब जन्म लेंगे वो वज्रषभ नाराज सहनन के साथ ही जन्म लेंगे, क्योंकि सहनन बाद में तो बदलता नहीं है। तो जो कोई वो चरम शरीरी है तो वैसे उनके सारे कर्म भी वैसे बंध के वो आएंगे। हाँ, आपका प्रश्न है कुछ? जरा उनका प्रश्न आप सुनेंगे। हाँ, भोग भूमि में तिर्यंच भी होते हैं, भोग भूमि में मनुष्य भी होते हैं।
जो आप बता रहे थे,
हाँ, अभी जिसने, हाँ, जो क्षायिक समय दृष्टि है ना,
तो वो मनुष्य होंगे।
हाँ, वहां के मनुष्य होंगे।
तो
देखिए ऐसा है, सम्यक तो अभी किसी ने प्राप्त किया नहीं, ऐसा जीव लेते हैं। कोई मिथ्या दृष्टि जीव, उसने पहले तिर्यंचायु बांधी है मान लेते, जैसे अभी श्रेणिक राजा ने नरकायु बांधी थी। ऐसा कोई जीव है जिसने तिर्यंचायु बांधी है, कुछ कोटे परिणाम हुए थे, बाद में उसके परिणाम सुधर गए, उसने तत्व का अभ्यास किया, विचार किया, उसको सम्य दर्शन हुआ और वो क्षायिक सम्य दृष्टि भी हो गया, परंतु तिर्यंचायु तो बांधी है उसने, तो वो क्षायिक सम्य दर्शन के साथ भोग भूमि का तिर्यंच होगा और उसके बाद क्षायिक सम्य दर्शन के साथ देव होगा, विमानवासी देव, और वहां से नियम से मनुष्य में आएगा और मोक्ष चला जाएगा। मनुष्य में भी ऐसे किसी ने मनुष्यायु पहले बांधी है, बाद में समय दर्शन प्राप्त किया है। देखो आयु बनती है तो वो बदलती नहीं है, बाद में समय दर्शन प्राप्त किया है। अब मान लेते हैं वो वेदक ही समय दर्शन रहा उसका, तो वो समय तो छोड़कर चला जाएगा मनुष्यायु के लिए, या तो मिथ्या दृष्टि होकर कहीं का भी मनुष्य होगा, क्योंकि भोग भूमि का मनुष्य हुआ है और बाद में सम्य दर्शन प्राप्त किया है और सम्यक्त्व के साथ वो भोग भूमि में जाना है, तो ये नियम है कि उसको क्षायिक होना आवश्यक है। अभी यहां से कोई भी जीव सम्यक दृष्टि है तो सम्यक्त्व के साथ भोग भूमि में नहीं जा सकेगा, ना सम्यक्त्व के साथ तिर्यंच होगा। वो नियम से सम्यक दृष्टि भी होगा तो यदि उसने भोगभूमि वाली बड़ी आयु लंबी बांधी है तो मिथ्या दृष्टि होकर जाएगा, या अभी कोई यहां सम्य दृष्टि मनुष्य है, सम्यक्त्व के साथ मरकर जाने वाला जीव तो देव में ही जाएगा। हम मनुष्य है, दोबारा मनुष्य में विदेह क्षेत्र में जन्मना चाहते हैं तो मिथ्यात्व में जाके जाना पड़ेगा, या सम्यक्त्व प्राप्त ही नहीं किया हो, मिथ्यात्व ही दशा रही हो तो विदेह में जन्म सकता है, वो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि समय दृष्टि होने के बाद तो उसको एक बाद में आयु बांधेगी तो स्वर्ग की ही बनती है। ऐसे बहुत सारे नियम हैं करणानियोग के, जैसे कोई स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता है, ऐसी ऐसी जो बातें हैं वो तो कर्णानियोग के द्वारा यहाँ सिद्ध होती है।
आपने वेदक संकेत बोला जिससे थोड़ा बोला, वेदक संकेत,
वेदक संकेत, उसकी बात क्या? वेदक संकेत है ना क्षोभम सम्यक दर्शन। क्षोभम सम्यक दर्शन का अर्थ क्या है? वो तीन मोहनी के दर्शन, मोहनी की तीन प्रकृतियां हैं, मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति। जब पहले में पहले औक्षमिक सम्यक तो होता है, तो मिथ्यात्व नाम की जो एक प्रकृति पहले बंधी हुई थी उसके तीन भेद हो जाते हैं, अनुभाग की अपेक्षा उसका अनुभाग घटकर दूसरी एक प्रकृति होती है और एक तीसरी भी होती है। अत्यंत हीन अनुभाग वाली, अत्यंत कम इंटेंसिटी वाली सम्यक प्रकृति है तो दर्शन मोहनी की प्रकृति, परंतु उसका उदय होता रहता है और ये अंदर सत्ता में पड़ी रहती है, दबी रहती है, तो सम्यक प्रकृति का उदय है तो सम्यक्त्व तो भ्रष्ट नहीं, सम्यक्त्व तो चलता रहता है, परंतु सत्ता में ये दो पड़ी है तो उसको कहते हैं वेदक सम्यक्त्व या क्षोभम सम्यक्त्व, क्योंकि इसका उदय चल रहा है ना, ये मंद उदय है, सम्यक्त्व को बाधा नहीं पहुंचाता, फिर भी मिथ्यात्व और सम्यक मिथ्यात्व प्रकृति सत्ता में पड़ी है और जब जब उदय रूप होगी तो इस रूप से उदय रूप होती रहती है। ये बात सभी अभी गुणस्थान के प्रकरण में आने वाली है, विस्तार से आएगी।
बैंसरी बेन की बात में कुछ बात है, तो वेदक संकेत की बात उसमें कुछ अलग रेफरेंस था वेदक संकेत के बारे में।
नहीं, उन्होंने ऐसा बताया था कि जो क्षोभम सम्यक बिना पड़े, बिना भ्रष्ट हुए ऐसे ही चलता रहे, हमने देखा था ना वेदक सम्यक तो अधिक से अधिक चलता रहे तो 66 सागर तक चलता रहता है, तो ऐसा ही चलकर वो क्षायिक हो जाए तो उसको उन्होंने जोड़नी संकेत किया, तो इन्हें क्षायिक हो जाता है, यानी भ्रष्ट होने जरूरी है ऐसी बात नहीं है। तो बिना गिरे वेदक में से क्षायिक होता है उसको उन्होंने कहा था, परंतु वो बात कर्णानियोग में कहीं ऐसे उस शब्दों में नहीं आई है, इतना ही लिखा है कि वेदक का अधिक कितना काल हो सकता है, उसमें सभी पॉसिबिलिटीज होती है। अब ये जो हमने
चौथे पांचवें आर्य में तो नहीं,
चौथे में तो होता है ना, पांचवें में नहीं होता, क्योंकि उसका क्षायिक सम्यक के लिए निमित्त रूप से केवली या श्रुत केवली के पाद मूल में ही होता है, कर्मभूमि के मनुष्य को होता है, और केवली
अगले भाव में मूल्य हो तो भी नहीं सकता,
अगले भाव में
केवली के पास हो और ये तो।
हाँ हाँ, देखिए आपका प्रश्न है पिछले भाव में, अगले भाव में, अगले पिछले करना हिंदी और गुजराती का हमेशा घोटाला होता है, प्रीवियस भाव में हम केवली के पास में थे तो क्या इस भाव में क्षायिक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता, यानी देशना जो है वो तो भले दूसरे तीसरे भाव तक भी काम कर सकती है, जैसे हमने गत भाव में प्रीवियस भाव में केवली की हो या आचार्यों की हो या किसी ज्ञानी के चौथे पांचवें गुणस्थान वाले की भी उपदेश सुना है, देशना मिली है हमको, और उस समय भी हमने कुछ विचार किया है या थोड़ा विचार किया है, और इस भाव में सम्यक तो हो सकता है क्योंकि हमको देशना ऑलरेडी मिली है ज्ञानी के पास से, तीसरे भाव में भी ऐसा हो सकता है, परंतु क्षायिक सम्यक तो ऐसा नहीं होता, भले वो केवली के पास से भी क्यों ना आया हो उसको क्षायिक सम्यक तो नहीं हो सकता, ये ऐसे नियम होते हैं। क्षायिक के लिए वो बस यानी वो डायरेक्ट प्रेजेंस ही आवश्यक है, उन्हीं के कॉन्टैक्ट में हो, उनके पादमूल में कहा जाता है वहीं पर हो जाता है, क्योंकि उनके उपदेश में उसकी वहां जीव की ऐसी विशुद्धता होती है, तत्व ज्ञान की इतनी निर्मलता होती है, ऐसा उसका उपयोग स्वसन्मुख होता है कि उसको क्षायिक सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, वो भगवान कुछ नहीं दिलाते उसको, क्यों भगवान देते होगे ना तो एक को क्यों दिया, नहीं तो हम उनको वितराग नहीं कहेंगे, क्योंकि किसी एक शिष्य को क्षायिक दिया और दूसरे को नहीं दिया, वो कुछ देते बीते नहीं है, जीव स्वयं अपनी योग्यता से प्राप्त करता है। तो ये क्षायिक की भाव बात हो गई है। क्षयोपशमिक भाव 18 प्रकार के हैं, हमने कल गिनाए थे, चार जो सम्यक ज्ञान है और तीन अज्ञान है। चार सम्यक ज्ञान कौन से देखे थे? मति, श्रुत, अवधि और मनःपर्याय, और तीन कुज्ञान, कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये सात तो क्षयोपशमिक ज्ञान कहलाएंगे। दर्शन में चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन और अवधि दर्शन, ये तीन दर्शन हुए। और दान, लाभ, भोग, उपभोग, वीर्य, इनके भी क्षयोपशमिक भाव थे, उनमें भी क्षयोपशम होता है। तो पांच तो ये हो गए, सात, तीन, दस और पांच, पंद्रह तो ये हुए। और जो तीन टोटल अठारह है ना, तो क्षयोपशमिक सम्यक्त्व, जिसको हमने वेदक सम्यक्त्व कहा, वो एक क्षयोपशमिक भाव है। दूसरा कौन सा है? संयमा संयम है, जिसको देश विरत, कल देखा ना, देश विरत, पार्शल विरति होती है, यानी पांचवें गुणस्थान वाला। और है वो सराग चारित्र, जिसको कहते हैं छठे सातवें गुणस्थान वाला, वहां चारित्र मुनि का क्षोभम पाया जाता है। तो ऐसे एक क्षोभम भाव अठारह है। आगे वाला जो है औदयिक भाव, औदयिक भाव कितने लिखे वहां? 21 है, और उसको कल हमने गिनाए भी थे। चार तो गति है, चार कषाय है, गिनना हो, तीन वेद है, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुसक वेद, छह तो लेशा है, कितने हुए? 17 हुए। अच्छा, अब एक है मिथ्यात्व, अज्ञान, एक है असंयम और एक है असिद्धत्व। ये 21 भाव है। देखो अभी यहां एक अज्ञान शब्द आया है, औदयिक भाव में अज्ञान शब्द आया है। और जो हमने देखे थे क्षयोपशमिक भाव, वहां तीन अज्ञान ऐसा आया था, तो उसमें क्या अंतर है ये थोड़ा विचार करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कहा? कुमति, कुशरुता और कुअवधि, इसको भी वहां तीन अज्ञान कहा था। औदयिक भाव में भी यहां लिखा है अज्ञान भाव, तो वहां कौन सा अज्ञान लेना? वहां तो अज्ञान यानी मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहा है। अब यहां जो औदयिक अज्ञान है वो कौन सा अज्ञान समझना?
हाँ, हम जो भूल जाते हैं,
हाँ,
वो अज्ञान औदयिक भाव है?
नहीं, वो क्योंकि मतिश्रुत ज्ञान में जो भूल जाते हैं ना, वो क्षयोपशम भाव की कम अधिक उघाड़ है। हाँ, आप और क्या आया था उसमें?
नहीं, इसमें ऐसे बोला कि क्षयोपशम का जो बंदपना पड़ता है वो उससे अज्ञान जुदा है। हम लोग भूलते हैं कि चाबी कहाँ रख दी, चश्मा कहाँ रख दिया, भूल गए, तो उनको उसको औदयिक अज्ञान बोला।
किसने? सुमित प्रकाश जी ने कहा था। उन्होंने इनका प्रश्न है कि सुमित प्रकाश जी ने कहा था कि जो हम कहाँ चाबी रखी है, क्या है, वो भूल जाते हैं, वो उसको औदयिक अज्ञान कहा है।
न्यूटन का दाखला, न्यूटन में जो कहा ना कि वो दो होल रखे बिल्ली के लिए, बड़ी बिल्ली और छोटी बिल्ली के लिए, वो औदयिक अज्ञान था।
हाँ, देखो अभी औदयिक अज्ञान एग्जैक्ट किसको कहना है? वहां तो कर्मों का क्षोभम चल रहा है,
ज्ञान का भी
क्षोभम चल रहा है, यानी ज्ञान का उघाड़ वहां कम ज्यादा हो रहा है, कम हो रहा है या ज्यादा हो रहा है। ये जो देशघाती का उदय है ना, तो देशघाती नाम के जो ज्ञानावरण, अभी हम मति ज्ञान की बात करेंगे, मति ज्ञानावरण कर्म जो है वो देशघाती कर्म है। देशघाती यानी पार्शल घात करता है, पूरा घात कर नहीं सकता है। तो उसके जो स्पर्धक होते हैं, उसके जो स्पर्धक यानी उसके जो कर्म परमाणु है, उसकी जो इंटेंसिटी है वो कम अधिक होती है। जहां आवरण ज्यादा है वहां ज्ञान का उघाड़ कम है। आवरण हट गया है तो ज्ञान का उघाड़ ज्यादा है। जैसे हमने पहले चाबी रखी थी वो हमको याद थी कुछ काल के लिए, बाद में भूल गए, तो ये क्षोभम कम ज्यादा हो गया है। इसको तो हम ये क्षोभम भाव में ही घटाएंगे। परंतु जैसे आपको अभी अवधि ज्ञान है क्या, मैं पूछ रही हूं? अवधि ज्ञान है नहीं है, तो अवधि ज्ञानावरण है तो देशघाती प्रकृति, परंतु फिर भी उसके सर्वघाती स्पर्धकों का उदय चल रहा है, तो ये औदयिक अज्ञान है हमारा। कर्म के उदय में जो ज्ञान प्रकट नहीं है उसको अभी हम औदयिक अज्ञान कहेंगे। जैसे भी केवल ज्ञानावरण का उदय है और जीव में क्या है, केवल ज्ञान है नहीं है, तो हमारा ये औदयिक अज्ञान चल रहा है। समझ में है ना?
घाती में हमारे देश घाती और सर्वघाती दोनों में लागू
पड़ेगा। औदयिक अज्ञान जो है वो तो सर्वघाती में, यानी देशघाती प्रकृति में, सर्वघाती में, सब में, दोनों प्रकृति में लागू होगा। अब इन्होंने सामान्य रीति से समझाया होगा कि देशघाती में भी जैसे हम तमिल भाषा नहीं जानते अभी, तो हमारे तमिल भाषा ज्ञानावरण का उदय चल रहा है। जब हम जानने लगे तो तमिल भाषा ज्ञानावरण का क्षोभम कहलाएगा। तो जो नहीं जान रहे हैं उसको हम औदयिक अज्ञान कहेंगे। जैसे अभी हमारा मनपरे ज्ञान नहीं है, औधि ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, यह हमारा औदयिक अज्ञान है। और जो हमें मतिश्रुत ज्ञान है वो हमारा क्या है? शौक्षमिक ज्ञान है। तो जो मिथ्या दृष्टि को जो मतिश्रुत ज्ञान है उसको हम वो क्षौक्षमिक कहेंगे, उसको कुमति कहेंगे, उसको अज्ञान भी कहेंगे, परंतु वो क्षौक्षमिक वाला अज्ञान है। अज्ञान ने वहां मिथ्या ज्ञान को अज्ञान कहा है। और औदयिक ज्ञान अज्ञान में जो ज्ञान प्रकट नहीं है उसको औदयिक अज्ञान कहा। थोड़ी पहली बार सुनते तो थोड़ा ऐसा लगे ये क्या चल रहा है। क्षौक्षमिक यानी मति ज्ञान आवरण के क्षोभम से जो मति ज्ञान प्रकट है वहां वो क्षौक्षमिक भाव है। जो मिथ्या होगा ज्ञान तो उसको अज्ञान कहेंगे। और जो ज्ञान हमके प्रकट ही नहीं है, कर्म के उदय के कारण वो प्रकट नहीं है, जैसे हमें अवधि ज्ञान नहीं है, मनपरी ज्ञान नहीं है, केवल ज्ञान नहीं है, वो हमारा औदयिक अज्ञान कहलाएगा, कर्म के उदय में होने वाला अज्ञान। क्षौक्षमिक भाव में तो अभी तो हम इतना ही समझेंगे। हाँ,
मतलब जो प्रेजेंट नहीं है वो अज्ञान, जो औदयिक अज्ञान, और जो है पर उसमें
कम ज्यादा होता है। वो क्योंकि वहां देशघाती का उदय चल रहा है। हाँ, तो देशघाती के आवरण में भी कम ज्यादा होता रहता है, उसको वो क्षौक्षमिक ज्ञान कहेंगे। मिथ्या होगा तो क्षौक्षमिक अज्ञान कहेंगे, और सम्यक होगा तो क्षौक्षमिक ज्ञान कहेंगे। क्योंकि ज्ञान और अज्ञान कहने की भी अपेक्षा अलग अलग जगह अलग अलग आती है। कल बताए थे यहां अपेक्षा है। छह द्रव्यों में पांच द्रव्य कुछ जानते नहीं उसको कहेंगे वो अज्ञानी है, और जीव को कहेंगे ये ज्ञानी है। जिसको सम्यक ज्ञान है उसको कहेंगे ये ज्ञान है, ये ज्ञानी जीव है। चौथे गुणस्थान वाले को भी कहेंगे ये ज्ञानी है, और पहले तीन गुणस्थानों को कहेंगे वे अज्ञानी है। बारहवें गुणस्थान तक के जीवों को अल्पज्ञ है इसलिए कहेंगे अज्ञानी है, और केवल ज्ञानी को कहेंगे ये ज्ञानी है। ऐसी अपेक्षा अलग अलग आती है। यहां जो औदयिक अज्ञान की बात की है, जो ज्ञान प्रकट नहीं है उसको औदयिक अज्ञान कहेंगे, और जो ज्ञान प्रकट है उसको यानी छद्मस्तका उसको हम क्षोभम ज्ञान कहेंगे। केवल ज्ञान जब प्रकट होता है उसको कौन सा ज्ञान कहेंगे? हाँ बेटा बोलो आप। केवल ज्ञान जो प्रकट है, अरिहंत भगवान का जो केवल ज्ञान प्रकट होने पर, उनको कौन सा ज्ञान कहते हैं? हम पढ़े हैं इसमें। हाँ, क्षायिक ज्ञान, ख्याल है ना। हाँ, और अभी हमें केवल ज्ञान है ही नहीं है, वो औदयिक अज्ञान। केवल ज्ञान संबंधी ये औदयिक अज्ञान है। ये औदयिक भाव की चर्चा है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। पारिणामिक भाव यहां तीन लिखे हैं। पारिणामिक इसलिए कहा है क्योंकि वो कर्म के कारण नहीं होते। आपको मालूम ये तीन कौन से हैं? नहीं मालूम? हाँ, बहुत अच्छा। जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। इसको पारिणामिक क्यों कहा? क्योंकि ये किसी कर्म के निमित्त से नहीं पाए जाते। तो कहेंगे ये भव्यत्व और अभव्यत्व, कोई जीव भव्य है उनमें ही सम्यक दर्शन की पात्रता है और वे ही मोक्ष जा सकते हैं, और कोई जो अभव्य है वो अनादि से अनंत काल तक अभव्य रूप ही रहते हैं, और वो कभी तीन काल में उनके सम्यक्त्व की प्राप्ति ही नहीं होगी। परंतु ऐसा नहीं समझना कि सभी भव्य जीव मोक्ष चले जाएंगे और यहां केवल अभव्य ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि भव्य जीव ऐसे है उनमें पात्रता तो है, परंतु अनंतानंत भव्य जीव संसार में ही अनंत काल तक पड़े रहेंगे। पात्रता होने पर भी ऐसा है कि वो पुरुषार्थ भी नहीं करेंगे और समय पर भी नहीं प्राप्त करेंगे, ऐसे भी भव्य जीव पाए जाएंगे।
कभी ना कभी तो करेंगे
नहीं, कभी ना कभी नहीं, निगोध नित्य निगोध में अनंत भव्य जीव पड़े रहेंगे। और ऐसा भी नहीं कि जो बाहर आए वो सभी मोक्ष चले जाएंगे, क्योंकि उनमें पात्रता होते हुए भी वो कभी मोक्ष का पुरुषार्थ ही नहीं करेंगे, ऐसा है ना। हम तो केवल ज्ञानी नहीं है, हम कैसे कहेंगे? हाँ, और आप अपने आप को अभव्य क्यों मान रहे हैं या दूरानुदूर या अभव्य संभव्य क्यों मान रहे हैं? ऐसा क्यों नहीं मान रहे कि अरे मैं भव्य ही हूं और मुझे ये पुरुषार्थ करके ये प्राप्त होगा ही? पहले अंदर से ऐसा विश्वास आता है और कार्य हुए बिना नहीं रहता। अन्य चीजों में तो हम बहुत पुरुषार्थ करते हैं, कोई बात नहीं होगी जब समझ में आती है, कैसे नहीं होती, मैं करके दिखाऊंगा, उसमें कितना होता है ना, जिसमें रुचि है और नहीं मिलती ऐसी बात, कैसे नहीं मिलेगी, हम करके दिखाएंगे, ऐसा होता है। तो इसमें क्यों नहीं होता? जरूर होगा, रुचि होगी तो जरूर होगा। ये अपने को अभव्य मान के क्या करें, हम अभव्य क्या करें, हमारा कुछ नहीं होने वाला। क्यों नहीं करते पुरुषार्थ? यानी क्या? वजन उठाना है आपको, क्या करना है? क्योंकि पुरुषार्थ का अर्थ ही हमने गलत समझा है। पुरुषार्थ नहीं करते हैं या नहीं हो रहा है या क्या करें, हमारे कर्मों का आवरण है, ऐसे ऐसी बातें बनाता है जी। जिसमें रुचि है, अभी वो यहां तो कुछ बात नहीं है, मगर इंडिया में जिसको कोई टीवी सीरियल मन पसंद की है तो कैसे भी करेगा, काम आगे पीछे करेगा, झटके हो जाके बरोबर उस टाइम हुआ टीवी के सामने बैठ जाएगा। आपने देखा होगा यहाँ पर भी होता है। अच्छा,
वो सारे गम सुनती
है। अच्छा, ये सारे गम क्या, हमको जरा समझाना पड़े। देखो, हम इंडिया में रहते हुए भी हमारे पास केबल हमने नहीं रखा है, और टीवी भी हमारा वो नहीं के बराबर ही है घर में। कभी कोई हादसा होता है बड़ा, जैसे वो अभी बम ब्लास्ट हुआ था, फिर लोग हमको फोन करके बताते कुछ हुआ है, फिर हम टीवी ऑन करते हैं, न्यूज देखते हैं।
चलो, पैराग्राफ है, हाँ, आधा पैराग्राफ के बाद जो है थोड़ा समझने में तकलीफ
है। हाँ, पेज नंबर,
पारिणामिक भाव की व्याख्या।
अच्छा, पारिणामिक भाव की व्याख्या, इसमें से हमने व्याख्या नहीं पढ़ी, हम अभी पढ़ेंगे। हाँ, देखो देखो, अच्छा अभी पारिणामिक भाव की आई है बात, तो हम पहले पारिणामिक भाव को लेंगे। पारिणामिक भाव हमने तीन प्रकार के देखे, जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व। ये भव्य और अभव्यपना जो है वो किसी कर्म के कारण नहीं है। आप कहेंगे उस बिचारे जीव का क्या दोष है, उसकी ऐसी सहयोग्यता है कि कोई भव्य होते हैं और कोई अभव्य होते हैं। भव्यों में पात्रता है, अभव्यों में ऐसी पात्रता ही नहीं है। पर पात्रता होने से क्या होगा, तो जो जीव पुरुषार्थ करता है, मोक्ष का पुरुषार्थ करेगा तो मोक्ष पर्याय प्रकट होगी। जैसे कोई स्त्री है तो उसको तो बच्चा होने की तो योग्यता है, परंतु वो शादी नहीं करे, उसको बच्चा होगा भी नहीं, पात्रता पड़ी है ना उसके। हम देखते हैं किसी ने ब्रह्मचर्य लिया है तो उसको कोई बच्चा होने का सवाल ही नहीं है, फिर भी पात्रता तो है उसके अंदर। ऐसे ही कोई भव्य जीव है परंतु उसने कोई पुरुषार्थ नहीं किया है मोक्ष का, कभी करेगा भी नहीं, ऐसे भी है ना। क्योंकि केवल ज्ञानी उसको जानते हैं कि ये जीव तीन काल में मुक्त होने वाला नहीं है, ऐसे भी भव्य जीव इस विश्व में है। और वो जब तक वो भव्य, कब कहेंगे होने योग्य, जब सिद्ध हो, क्या होने योग्य, सिद्ध होने योग्य, उसको भव्य सिद्धिक भी कहते हैं। और अभव्य सिद्धिक, भव्य के आगे सिद्ध शब्द लगाते हैं या सिद्धिक लगाते हैं, अभव्य सिद्ध या भव्य सिद्ध। जैसे हम कहेंगे ना, कोई मेडिकल कॉलेज में गया है, अभी ये क्या होने वाला है, डॉक्टर होने वाला है, डॉक्टर होने योग्य है। और हो जाता है तो क्या कहेंगे उसको, होने योग्य कहेंगे कि डॉक्टर कहेंगे? डॉक्टर कहेंगे ना, होने के बाद। वैसे जो जीव सिद्ध हो चुके हैं उनको भव्य नहीं कहते, उनको तो सिद्ध कहते हैं। और जिनमें पात्रता है उनको कहते हैं ये भव्य सिद्ध है। और अभव्य सिद्ध है ने, जो तीन काल में कभी सिद्ध होने ही वाले नहीं, उनको समय दर्शन भी नहीं होने वाला है, वो है अभव्य सिद्ध, वो किसी कर्म के कारण नहीं है, ये बात है। तो ये जो भव्य और अभव्य भाव है, वो स्वभाव है, उसके लिए कोई कारण नहीं है, कोई निमित्त नहीं है, इसीलिए उसको पारिणामिक भाव में लिया है। फिर भी इन पारिणामिक भावों में क्या इसके लक्ष्य से समय दर्शन होगा? ये ऐसा स्वभाव है, नहीं स्वभाव रूप योग्यता है, परंतु इस भव्यत्व अभव्यत्व के लक्ष्य से सम्य दर्शन नहीं होता। तो ये जो जीवत्व नाम का पारिणामिक भाव है, क्योंकि ये भव्यत्व भाव है, फिर भी सिद्ध होने पर उसके अभिव्यक्ति होती है, तो वहां सिद्धों में कौन सा पारिणामिक भाव रहा? जीवत्व नाम का। और ये तीनों ही पारिणामिक भाव सबको नहीं होते, जो संसार अवस्था में है उनको भव्य और पारिणामिक होगा, ये जीवत्व होगा, भव्यत्व और जीवत्व होगा, या अभव्यत्व और जीवत्व होगा?
वैसे तो ये 52 ही भाव है ना, 53 ऐसे कोई भी जीव को 52 ही हो सकते हैं
एट ए टाइम तो नहीं है। ये तो टोटल गिनाने की बात है,
गिनाने की बात है तो 52
जैसे
साक्ष यस और नो भव्य
का, ये ऐसा भी है ना, जैसे अभी साक्षमिक भाव है, जिसको ज्ञान है उसको अज्ञान तो नहीं होगा ना, वो मिथ्या ज्ञान, या तो सम्यक होगा या तो मिथ्या होगा, तो वहां भी 18 के 18 किसी को नहीं होगी। हाँ इस तरह से है,
फिर भी ये तो परमानेंट है ना भव्य।
क्वेश्चन है, शराब चरित्र और संयम असंयम,
देखो सराग चारित्र छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनियों के होता है, और संयम असंयम पांचवें गुणस्थानवर्ती जीव को होता है। तो कुछ संयम है कुछ असंयम है, तो वहां उनके प्रतिपक्षी कर्मों का क्षोक्षम पाया जाता है। अभी ये जो चार कषाय चौकड़ी है उसमें वो लगते हैं,
संयम असंयम पांचवें गुणस्थान,
हाँ पांचवा गुणस्थान, उसको देश विरत कहो, वीरता विरत कहो, संयमासंयम कहो, एक ही बात है, उनके देश चारित्र पाया जाता है।
चारित्र मुनि का होता है
मुनि। हाँ हाँ हाँ, आपका प्रश्न कुछ था ना, अभी 2 ही मिनट बाकी है, कौन सा है विशिष्ट वाक्य?
परिणामिक भाव की जो व्याख्या है ना, तो यहाँ से परिणामिक कहता है परिणाम में वो ध्वनि आवे छे, हाफ हाफ पैराग्राफ के बाद परिणामे छे एटले द्रव्य गुण नु नित्य वर्तमान रूप निरपेक्ष पण छे, तो जे परिणामे छे ने सो परिणामिक भाव परिणामे छे एम कहेवू इट डजंट साउंड राइट।
वो परिणाम है जीव का, कैसा परिणाम है इसमें तो लिखा नहीं है कि, हाँ देखो हिंदी में पढ़ती हूँ, आप सुनना एक वाक्य पहला सुन, देखो देखो परिणामिक का अर्थ है सहज स्वभाव, उत्पाद व्यय रहित ध्रुव एक रूप स्थिर रहने वाला भाव पारिणामिक भाव है। हाँ, जिसको कारण परमात्मा कहेंगे, ध्रुव्य कहेंगे, जीव का ध्रुव स्वभाव जो है उसको यहाँ पारिणामिक भाव कहा है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे, वो गुजराती में से भी पढ़ेंगे और उसकी अधिक चर्चा करेंगे, क्योंकि हमने 2 ही भावों की व्याख्या यानी परिभाषा देखी है, अन्य 3 भावों की परिभाषा भी देखेंगे और आगे बढ़ेंगे दोपहर में, अभी यहीं रुकते हैं अभी हम। 2400 भगवान की जय है।